शांति। संगम युग पर भाग्य विधाता वरदाता दोनों ने हम सब बच्चों के हाथ में भाग्य की लंबी रेखा खींचने की कलम दी है। हर एक जितनी लंबी रेखा खींचना चाहे, जितना जमा का खाता बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है। हम सब जो योग अभ्यास कर रहे हैं, बहुत चारों तरफ अच्छी भट्टियां चल रही हैं, ये भी एक जमा खाते का बहुत अच्छा चिन्ह दिखाई देता है। आप सभी अनुभव करते होंगे कि अगर हम 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा कोई कोई 8-10 घंटा भी अच्छी तपस्या कर रहे हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं, तो मनसा सेवा केवल हम दूसरों की नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे पास भी मनसा शक्ति का स्टॉक जमा हो रहा है। और जिसके पास मनसा शक्ति का स्टॉक जमा है तो उसकी निशानियां भी दिखाई देंगी। उसका मन बहुत कंट्रोल में होगा, मन के अंदर व्यर्थ की उत्पत्ति नहीं होगी, जब चाहे अपने संकल्पों को ब्रेक लगा सकता है, अगर उसके पास शक्ति जमा है तो। कुछ निशानियां जरूर दिखाई देना चाहिए। अगर हमने ज्ञान धन दान किया है, सदा मुख से ज्ञान रत्नों का ही दान चल रहा है, तो वाणी में वो मिठास, वो शक्ति जो बाबा कहते हैं, जो महान आत्माएं हैं उनके बोल भी सिद्ध होने लगते हैं, जो बोल देते हैं वो होने लगता है। अगर हम कर्मणा से गुणों का दान कर रहे हैं, ऐसे कर्म हमसे हो रहे हैं जो लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, उनको प्रेरणाएं मिल रही हैं, तो हमारी कर्म इंद्रियां स्वतः शीतल हो जाएंगी। वो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, जो कर्म इंद्रियों में कोई भी उत्तेजनाएं नहीं रहेंगी, सहज रूप से हल्कापन फरिश्तेपन का अनुभव होने लगेगा। तो ऐसी बहुत सी निशानियां हैं अगर हम जमा के खाते पर ध्यान देते हैं। और वर्तमान समय हम सभी ब्राह्मण बच्चों को विशेष इस बात पर अंडरलाइन करना चाहिए कि बचत कितनी है, खर्चे कितने हैं। अगर खर्चे अधिक हैं, बचत कम है, कमाई कम है, तो कभी न कभी किसी से उधार लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। कोई भी परिस्थितियां आती हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्टॉक जमा किया है, जिनके पास स्टॉक भरपूर है, वो परिस्थितियों को इतना सहज पार कर लेते हैं जैसे उनके लिए कोई खेल है, उनके पास खजाने हैं, शक्तियां हैं। हम सबको समय पर समय बाबा ने 3 खजाने जमा करने का इशारा किया है। अंतिम समय के पहले हम सबको ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करके प्रारब्ध अच्छे से अच्छी बना लेनी है। दिखावे वाला पुरुषार्थ नहीं है, बहुत गुप्त पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ भी कोई बड़ा नहीं है, बाबा ने बहुत सिंपल एक शब्द में कहा है, पुरुष आत्मा तो इस रथ पर विराजमान है। आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का ही सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। और इस अभ्यास से जितना हम रूहानियत को बढ़ाते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, उतना हम कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं। और जो कुछ करते हैं कर्म इंद्रियों से, उससे बहुत अच्छी जमा की पूंजी जमा हो जाती है। भविष्य प्रारब्ध के पहले ही वर्तमान समय ऐसी श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं इतनी संपन्न रहती हैं जो दूसरी कमजोर आत्माओं को भी वो मदद करती हैं। कोई भी आत्माएं उनके सामने आती हैं तो उनको ऐसी विधि बताती हैं, ऐसी शक्ति देती हैं, ऐसी दृष्टि देती हैं जो भी शक्तिशाली बन जाए, उसकी कमी कमजोरियां समाप्त हो जाएं। हमारे पास जमा है तो हम दूसरों को दे सकते हैं। तो पहला खाता हम सब जमा कर रहे हैं बहुत गुप्त पुरुषार्थ से, तन मन धन सफल करके, आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके, देही अभिमानी स्थिति द्वारा कर्म इंद्रिय जीत बनकर जो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं वो जमा पूंजी तैयार हो रही, भविष्य प्रारब्ध भी बन रही है और वर्तमान में बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थिति बन रही है। दूसरा बाबा ने कहा है, बच्चे समय पर दुआएं बहुत मदद करती हैं और हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास दुआओं का स्टॉक जरूर होना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार की अचानक परिस्थितियां आती हैं, पिछले कोई ऐसे रहे हुए हिसाब किताब आते हैं। अगर हमारे पास दुआओं का स्टॉक है तो बहुत सहज रीति से आने वाले पेपर्स को हम पार कर लेते हैं। हमने देखा बहुत सारे पेपर्स दादियों के सामने आए, यज्ञ के सामने आए, उन्होंने अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा कई परिस्थितियों को इतना सहज पार किया जो किसी को पता भी नहीं चला। एक बार की बात मैं सुनाता हूं, हमारी दादी जी के सामने शरीर की परिस्थिति जब आई, बीमारी आई, सभी के सामने आती है, लेकिन दादी जी ने कैसे दुआओं के द्वारा इस बीमारी को पार किया। दादी जी बॉम्बे से आई थी, हॉस्पिटल से ही आई थी, अपने कमरे में थी और हॉस्पिटल वाली चारपाई पर लेटी हुई थी। मेरा उनके पास जाना हुआ, मैं कहा दादी से मुझे मिलना है, बहुत जरूरी काम है। मैं अकेले में ही गया, दादी जी को ऐसे उस चारपाई पर बिठाया हुआ था, हॉस्पिटल की चारपाई पर, और मैंने साथ में कुर्सी पर बैठ के दादी से दृष्टि पहले ली और फिर कहा, दादी मेरा एक संकल्प बहुत चलता है। क्या चलता है? दादी बहुत दिन हो गए मैं आपके नाम से पत्र लिखता हूं, पहले तो आप खुद लिखाती थी, उसके बाद जब मैं लिख के जाता था तो आप पढ़ती थी, पास करके देती थी, लेकिन अभी करीब 6 महीने से अधिक समय हो गया, आपने पढ़ना बंद कर दिया, आपने लिखाना बंद कर दिया, अभी मेरी थोड़ी दिल खाती है कि मैं प्रकाश मणि बन करके पत्र कैसे लिखूं। तो बहुत प्यार से बोलती है, अरे तुम तो बहुत अच्छा लिखता है, बाबा का वरदान है, दादियों की दुआएं हैं, तुम बहुत अच्छा, तुम लिखते रहो, कोई नहीं, हमने मैंने छुट्टी दी है तुमको, लिखो। नहीं दादी, मेरे को लगता है कम से कम अभी जब आप आ गए हैं मधुबन में तो पत्र लिखाओ। ये हमारी बहुत प्यारी सी मीठी मीठी रूह रिहान चल रही थी, गुलजार दादी सामने आ गई। गुलजार दादी कहती हैं, आज दोनों क्या रूह रिहान कर रहे हो? बहुत हंसते हुए बोला। तो दादी कहती, आज पता नहीं इसको क्या हो गया है, बार बार कहता है पत्र लिखाओ पत्र लिखाओ। अरे दादी इतना अच्छा लिखता है, सब ब्राह्मण कितना खुश होते हैं। तो दादी बहुत प्यार से बोलती है, दादी आपको लिखाना तो चाहिए। और दादी ने, गुलजार दादी ने जो शब्द कहे दादी फिर कभी कट नहीं करते थे। गुलजार दादी ने बोला तो मेरे तरफ देख के कहती, अच्छा लिख। तो मैं तो कॉपी पेंसिल लेके गया था, मैंने लिखना शुरू किया, मैंने कहा दादी लिखाओ। तो पहली लाइन लिखाती है, लिखो दादी बॉम्बे हॉस्पिटल से आई है और 100% ओके है। मैं रुक गया, मैंने कहा दादी ये तो मैं नहीं लिखूंगा, और ये अगर लिखूंगा तो 100% झूठा हो जाएगा। मैं कैसे लिखूं कि आप 100% ओके हैं, अभी तक ऑक्सीजन है, अभी आप उठ फिर चल नहीं सकते हैं, मुरली नहीं सुना सकते हैं, क्लास नहीं करा सकते, मैं कैसे लिखूं 100% ओके हैं। तो मेरे को ऐसे जोर से ऐसे दृष्टि देते कहती है, मेरे को क्या हुआ है। तो मैं चुप। कहती है, अरे ये तो डॉक्टरों का कोई चक्कर है, मैं तो 100% ओके हूं, ये तो 80-90 चलता है, ऐसे कह के। फिर कहती है, तुमको पता है, अरे मेरे पास बाबा की दुआएं, परिवार की दुआएं, सबकी दुआओं का स्टॉक है, मुझे कभी दर्द की महसूसता नहीं हुई, मुझे कोई दुख थोड़ी है, तकलीफ थोड़ी है, मैं तो 100% ओके हूं, कौन कहता मैं बीमार हूं। वो उनकी स्थिति थी, वो उनके पास दुआओं का स्टॉक था। हम सभी भी ध्यान दें, किसी भी प्रकार की, ये तो शारीरिक बीमारी आती है, कोई कोई बड़े सरल रीति से, सहज रीति से सूली को कांटा बना करके सहज पार कर लेते हैं, दुआएं उनको बहुत मदद करती हैं, दर्द की अनुभूति नहीं होने देती। आज गुलजार दादी को देखो, लाखों ब्राह्मणों की दुआएं हैं उस आत्मा को, बाबा की तो दुआएं हैं ही, उनका तो रथ है वो। डॉक्टर्स आते हैं, पूछते हैं दादी कैसे हैं, तो डॉक्टर्स के पूछने के पहले ही बोल देती, आप ठीक हैं। दादी के ऊपर चेहरे पर कभी भी आपको लहर नहीं दिखाई देगी, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, इतनी निश्चिंत तपस्वी मूर्त। बाबा उनसे कौन सी सेवा करा रहा है, वंडरफुल सेवा चल रही है, दुआओं का स्टॉक है आत्मा के पास, अच्छा पुरुषार्थ किया हुआ है, और पुण्य की पूंजी तो कितनी जमा है, जो भविष्य में क्या बनेंगे वो तो आप हम सब जानते हैं। ये तीन खाते हम सब ब्राह्मणों को चेक करने चाहिए और जमा करने चाहिए। एक तरफ हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध वर्तमान और भविष्य अच्छे से अच्छा बना लें, और दूसरी तरफ इतना सुख दे करके, सबको समय पर साथ दे करके, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे करके, एक दूसरे के साथी सहयोगी बन करके दुआएं कमा लें। अगर किसी आत्मा को भूल चूक से भी बद दुआएं मिलती हैं तो उसका योग नहीं लगता, कितना भी आप बैठे रहो योग लगेगा ही नहीं। एक तरफ से आप योग लगाने की मेहनत करेंगे और दूसरी तरफ उनकी बद दुआएं आपको डिस्टर्ब करती रहेंगी। इसलिए हम सब ब्राह्मण बच्चों को इस पर ध्यान देना है, जिनके पास दुआएं हैं वो हल्के हैं, डबल लाइट हैं, कैसा भी पेपर आ जाए वो खुद को बदल लेते हैं, वो बदला लेने की भावना नहीं रखते, खुद बदल जाते, सहज बदल जाते। तीसरा, बहुत गुप्त रीति से, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना पुण्य की पूंजी जमा की, कितना गुप्त किया, इतना बड़ा यज्ञ बाबा के धन से, जो उनकी लौकिक कमाई थी उससे 14 साल तक चला। भले उनके साथ और 2-3 परिवार समर्पित हुए थे, लेकिन गुप्त दान महापुण्य। कई बार बाबा ने कहा, इस हाथ से करो, इस हाथ को भी पता न चले, पूंजी जमा हो गई। कभी भी किसी मुरली में वर्णन नहीं किया कि मेरी संपत्ति से इतने सबकी पालना हुई, मैंने इनकी पालना की। अरे बाबा करण करावन हार है, वो करा रहा है, हुंडी उसकी है, भरने वाला वो है। कभी भी बाबा के शब्दों में भी, कहीं वर्णन में भी नहीं आया कि मैंने किया है, मैं करता हूं। आप सब, हम सबको एक बात बहुत अंडरलाइन करनी है कि जमा करने के तो अनेक साधन हैं, अनेक स्रोत हैं जमा करने के। जैसे कोई कुआं खोदा जाता है, 5-7 स्रोत मिल जाते हैं, तो अपने आप चारों तरफ से पानी आता जाता है, कुआं भरता जाता है। लेकिन अगर कोई एक सूक्ष्म दरार है अंदर, तो एक तरफ से सब स्रोत उसको भर रहे हैं और दूसरी तरफ से उस दरार से धीरे धीरे सिपेज होते होते थोड़े दिन के बाद वो खाली हो जाता है। जमा है, आ रहा है सब तरफ से, लेकिन उस सूक्ष्म दरार को ढूंढना बहुत मुश्किल है, पता ही नहीं चलता कहां से है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, नक्की लेक में इतना पानी भरता है, हर साल फुल होती है, ओवरफ्लो होती है, थोड़ी देर के थोड़े दिन के बाद ये खाली हो जाती है। बहुत साइंटिस्ट आए, लोगों को ने कहा कि इसके लीकेज को बंद करो, बहुत खोज किया पता ही नहीं चलता लीकेज कहाँ है, बहुत कुछ प्रयास किया, लाखों रुपया खर्च भी किया होगा। लीकेज को ढूंढना बहुत मेहनत का काम है। हम सब ब्राह्मण आत्माएं भी जमा तो बहुत कुछ कर रही हैं, यज्ञ सेवाएं कर रही हैं, बड़े प्यार से संभाल रहे हैं, बचत कर रहे हैं, लेकिन लीकेज अगर कहीं है तो जितनी जमाई कमाई जमा हो रही है उतनी लीकेज के द्वारा बाहर जा रही है। व्यर्थ की लीकेज को बचाने की बहुत जरूरत है और उसके लिए बहुत चेकिंग चाहिए। जैसे मम्मा का एक शब्द मुझे याद आता है कि बाबा के बच्चे 6 मास कमाते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, अमृत वेले उठेंगे, मुरली सुनेंगे, ब्रह्मा भोजन करेंगे, ज्ञान दान करेंगे, सब प्रकार से कमाई के अनेक स्रोत हैं उनके पास। लेकिन एक बार अगर किसी दिन गुस्सा आ गया, जोश में आ गए, तो सारी 6 मास की कमाई वो 5 मिनट में गुस्से में आकर के सब खत्म कर देते, बहा देते। ये लीकेज है। साकार बाबा की मूल्यों में आता है कि अगर कोई ने एक बार भी काम की चोट खा ली तो सारी कलप की सारे संगम की कमाई को एक सेकेंड में की कमाई चट हो गई। ये बाबा का शब्द है, की कमाई खत्म। हम जमा तो कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मान लो हम इतना योग कर रहे हैं, आज कोई 1:30 बजे उठता है, कोई 2 बजे उठता है, बहुत अच्छी तपस्या हम कर रहे हैं, कमाई हो रही है, जमा हो रहा है, मनसा सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन चलते चलते दिन के अंदर कोई ऐसे कारण बन गए, कोई ने मेरा अपमान कर दिया, कोई ने मुझे कुछ बोल दिया और मेरी स्थिति बिगड़ गई, डगमग हो गई, और एक भी कुवचन निकल गया, कटु वचन निकल गया, जोश में आ गए हम, तो क्या योग की कमाई जमा हुई या जितनी जमा की वो माइनस हो गई? और भी कई बार दूसरों से कर्जा लेना पड़ता है। 3-4 दिन पहले एक वरदान बाबा का आया, आप लोगों का ध्यान गया होगा, मुरली तो चली ही इस पर संडे की, लेकिन मेरा उस पर विशेष ध्यान गया कि बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये बदलेगा तो मैं भी बदल जाऊंगा, ये परिस्थिति बदलेगी तो मैं बदल जाऊंगा, ऐसी बातें सामने हैं वो बदल जाएंगी तो मैं बदल जाऊंगा। अगर दूसरों का सहारा लेकर के खुद परिवर्तन कर रहा है तो आपकी कमाई उसके शेयर में बट रही है। याद है वरदान में ये शब्द थे, शेयर होल्डर, अपना शेयर होल्डर आपने तैयार कर लिया, ये बदले ये बदले ये बदले, और अपने को बदलने के लिए फिर दूसरों के पास हम मदद लेते हैं, दूसरे के पास हम साथ लेते हैं, उनके सहयोगी बनाते हैं उनको, तो उनको कुछ तो देना पड़ेगा ना, कमाई से कुछ देना पड़ेगा। और कई बार जितनी हम कमाई करते हैं उससे ज्यादा हमारे खर्चे होते हैं। समझदार व्यक्ति को बहुत अटेंशन देना होता है कि कमाई के अनुसार ही हमारी खर्चे और हमारा बजट होना चाहिए। अगर कमाई कम है, जैसे आज वर्तमान समय, आप सब इस बात को ध्यान देना, यज्ञ के अंदर 3,000-4,000 भाई बहनों की पालना हो रही है, तीनों स्थान है, चारों स्थान है, हमारे हॉस्पिटल भी हैं, और जो भी आवत जो भी भंडारी बाबा के बच्चे दे रहे हैं, जमा कर रहे थे, अब भंडारी के अंदर कुछ नहीं, कोई देने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं। और मान लो ऐसे ही 4-5-6 महीना चला तो इसकी बिजली का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, हमारी गाड़ियां इतनी हैं सबके इंश्योरेंस का खर्चा, कब तक कहां तक कुआं देगा, हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। हम अगर यज्ञ रक्षक बाबा के स्नेही सहयोगी बच्चे बजट नहीं बना करके खर्च करेंगे तो क्या दूसरों से हाथ फैलाएंगे, मांगेंगे? बाबा हम सबको कहते हैं बच्चे जैसा समय है वैसे अपने आप को परिवर्तन करो। हम लोगों ने यज्ञ का बेगरी पार्ट भी देखा है, मैं आपको बताता हूं 1-2 बातें। सवेरे सवेरे हम लोग चक्कर लगाते थे, पांडव भवनी था हमारे पास, तो और कोई साधन नहीं थे, स्थान तो एक दिन प्रकाश फैला हुआ था, सवेरे 6 बजे के बाद रोशनी हो जाती है, तो कुछ लाइटें जल रही थी। दादी चक्कर लगा रही थी, वो देख रही थी कौन कौन चक्कर लगा रहे हैं, क्या करते हैं, और हम लोग चक्कर लगा के ऐसे चले गए। फिर दादी बैठी थी और हमें ऐसे बुलाया, ऐसे इधर हो, तुम यज्ञ के बच्चे हो, बाबा कहता है बच्चे हर प्रकार से जमा खाता बढ़ाओ। आप लोगों ने धन तो लाया नहीं यज्ञ के अंदर, कई लोगों ने यज्ञ में धन लगाया है और वर्तमान में गरीब गरीब बच्चों ने इसमें धन लगाया है। अगर ये बल्ब जल रहा है, कितनी पावर जा रही है, कितना खर्चा आ रहा है, और आप देख रहे हो आंखों के सामने लाइट जल रही है, क्या इसका स्विच बंद नहीं कर सकते हो? ये तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगा। अगर तुम एक यूनिट भी बचा दोगे, 15 पैसा, आधा रुपया, 1 रुपया भी बचा लोगे, तो आपकी पैसे से यज्ञ में बचत हो जाएगी। कई बार कहती थी, देखो ये टंकी पानी की बह रही है, भर गई है, चलो जब डिपार्टमेंट वाला आएगा बंद करेगा तब तक कितना पानी चला जाएगा बह करके, कितना नुकसान होगा। आप सब इसकी बचत करना सीखो, बचत योजना। आज हमारे पास सब कुछ है, बाबा ने सब साधन सब चीजें दी हैं। कई लोग एसी चला करके छोड़ के आ जाते हैं, कई लोग अपने घर में लाइट जला के आ जाते हैं, हो रहा खर्चा जा रहा है, कोई ध्यान नहीं। क्या ये हमारे खर्चे अधिक तो नहीं हो रहे हैं? दादी जानकी जी क्या कहती थी, हमारे ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए। सुना होगा, हम सुनते आए हैं, अरे हम कमाई कितनी कर रहे हैं और खर्चे कितने हो रहे हैं, एक एक दिन में हमारे ऊपर खर्चा कितना हो रहा है, हम कमा कितना रहे हैं, हम सोचे। यज्ञ हमारा हर प्रकार से हमारी पालना कर रहा है, हम सबको इसका बजट बनाना चाहिए। कम से कम खर्चे हो, व्यर्थ में न जाएं, लीकेज न हो, उसको हम बचाएं, और बचा करके यज्ञ को और समृद्ध शक्तिशाली बनाएं, ये हम सबकी जवाबदारी है। जमा करने के लिए अनेक साधन हैं, लेकिन हम 3 बातें आपके ध्यान पर आ रहे हैं, सब ध्यान देना। एक तो जिसने अपने जीवन को बहुत सहज और सरल बनाया है, आवरण नहीं है किसी चीज का, मैं बड़ा हूं, मुझे ये साधन चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ये चीजें चाहिए। कई लोगों को मैंने इतनी सेवा की है तो उसका रिटर्न चाहते हैं और ले रहे हैं। सेवा किया, यज्ञ में भाग्य बनाया, बहुत अच्छा पुण्य जमा किया, लेकिन अगर उसी की भेंट में हम उसका रिटर्न ले रहे हैं तो ऐसा न हो जितना हमने जमा किया उतना हमारा माइनस हो जाए, और माइनस होता गया तो एक दिन दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। बाबा तो चाहते हैं मेरे बच्चे इतना जमा कर लें जो 21 जन्म तो क्या 84वें जन्म के अंत में भी कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, संपन्न संपूर्ण भरपूर होकर के रहें। और हम सबको इस बात को अंडरलाइन करनी है कि अगर जरा भी किसी प्रकार की देखा देखी है, मैं है, आवरण है। एक बात बहुत अच्छी, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, कईयों के पास स्टॉक जमा होता है, बहुत जमा हमने किया है, हमने तन से सेवा की है, मन से की है, धन बचत किया है, धन यज्ञ में लगवाया है, अपना भी लगाया, दूसरों का भी लगवाया, बहुत नशा रहता है, खुशी भी रहती है, दिखाई देती है चलन से, इनको बड़ा नशा है कि मेरे पास जमा है, पूंजी जमा है। लेकिन जमा हुई पूंजी को अगर चेक नहीं कर रहे हैं और कोई उसमें कीड़ा लग गया है घुन बीच में, तो जब खोल के देखेंगे तो क्या होगा, होते हुए भी स्टॉक खाली है, सब कुछ जमा किया था। इस जीवन में भी कई बार मैं और मेरे का कीड़ा लग जाता है, मैंने किया, मैं करता हूं, मैं नहीं करता तो कौन करता, ये बहुत सूक्ष्म कीड़ा है जो जमा के खाते को माइनस कर देता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को निमित्त समझो, नम्रचित समझो, निर्माण चित होकर के रहो, करण करावनहार बाबा करा रहा है, कर्तापन का जरा भी भान ना आए तो जमा हो जाएगा। अगर कर्तापन का भान आया तो एक तरफ जमा होगा, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। इसलिए ये जीवन बहुत सहज सरल ऐसे जीवन हो जिसमें कहीं पर भी दिखावा ना हो, कोई ये न कहे कितने राजा यथार्थ से रहते हैं, कैसे रहते हैं, गरीबों के पैसे को कैसे ये प्रयोग कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई की भावना भी जागृत हुई तो उनकी यज्ञ के प्रति भावनाएं टूटती हैं। ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सबको बहुत सहज सरल जीवन जीना है। और दूसरी बात है, बीतती जो बीत गई उसका चिंतन नहीं करना, और भविष्य तो जो वर्तमान पर आधारित, जो वर्तमान अच्छे से अच्छा, उसका निश्चित भविष्य अच्छा है, उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए हम श्रीमत में मन मत मिक्स न करें। जो बाबा की श्रीमत है, श्रीमत सिर माथे, बहुत दिल से बाबा की हर आज्ञा का पालन करने वाली आत्मा, बड़ों की बात को रिस्पेक्ट देने वाली आत्मा। कई बार ऐसे होते हैं संगठन में कोई बातें आती हैं, बाबा एक बहुत सुंदर वरदान देता है कि संगठन के बीच में अगर, हमारी दादी जी प्रैक्टिकल बात करती थी, 90% लोगों की एक मत है और मेरे जो विचार हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैं समझता हूं मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल राइट कह रहा हूं, लेकिन 90% कहते नहीं, तो जहां मेजॉरिटी वहां मैं, वहां अपने विचारों का त्याग करना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम दूसरे के विचारों को कट करते हैं तो बाबा कहते हैं ये आपका अभिमान दिखाई देता है और सामने वाला अपमान की फीलिंग करता है। जहां अभिमान और अपमान ये दो चीजें आ गई, वहां पर आपका जमा खाता समाप्त हो गया। इसलिए मैं कितना भी राइट हूं, मैं समझता हूं मैं यज्ञ रक्षक हूं, मैं यज्ञ की बचत कर रहा हूं, लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जहां संगठन टूट रहा है वहां सबसे बड़ा विघ्न पड़ रहा है। जमा के खाते वाली आत्माएं बहुत नम्रचित, बहुत निर्माणचित, उनके पास एक मोल्डिंग पावर होती है। दादी इतना जल्दी मोल्ड करती थी, मुझे याद आता है जब मीटिंग करते थे 8-10 भाइयों को बुलाती थी सामने, कोई भी प्लान बिना मीटिंग के दादी ने नहीं किया होगा, सबकी राय लेनी है, और राय लेने के साथ देखती थी सबके विचार एक हैं, तो कहती है तो सफल हुआ पड़ा है कर लो, और अगर 10-12 में से 1-2 ने कट कर दिया कि दादी अभी ये से कैसे होगा, ये ठीक नहीं लगता, ये ठीक नहीं, कोई ने कट कर दिया तो दादी चुप हो जाती थी, कहती थी अभी ये विघ्न है, अभी रुक जाओ, अभी नहीं करना। हम सबके विचार एक हो जाएं, हमारी भावनाएं एक हो जाएं, जैसे सब चल रहे हैं ऐसे हम भी अपने आप को झुका लें, जमा का खाता हमारी आत्मा को बहुत भरपूर कर देता, संतुष्ट मणि बना देता। जिसके पास है तो वही तो संतुष्ट मणि बन सकता है। तो हम समय अनुसार अपने जमा के खाते को बढ़ाएं, जहां पर भी लीकेज है उसको बंद करें, अपनी वाणी पर ध्यान दें, अपने संकल्पों पर ध्यान दें, और जैसे अभी परिवार वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, अगर हमारे पास जमा होगा, शक्तियां जमा होंगी, खजाने जमा होंगे, तो हम उनको मदद कर सकेंगे, सहारा बन सकेंगे, सहयोग दे सकेंगे। इसलिए हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से, संकल्प, श्वास, समय से हम अपने जमा के खाते को बढ़ाएं, और बीच बीच में चेक जरूर करें कि कहीं वो खाता खाली न हो जाए, गुप्त रीति से खाली न हो जाए या शेयर्स में बट न जाए। जमा है तो खुशी है, हल्कापन है, हम मोल्डिंग नेचर है, सबके साथ हम मिलजुल करके चल सकते हैं, कोई भी बात आएगी हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो हम सब अपनी निशानियों से अपने आप को चेक करें और जमा के खाते से स्वयं को संपन्न बनाएं। ओम शांति।
दुनिया।